ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेम उदीरयेत्। शन्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः तदीयन्तस्तहि अभद्राणि विद्नोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 7। मेरे पीछे दोहराइए, भूमि तुरियं जग्रह कातपुर वरे वै इरीनं ब्रह्महत्याया रूपं भूमो प्रदश्यते। भूमि तुरुयं जग्राह कातपूरवरेण वै इरीनं ब्रह्महत्याया रूपं भूमो प्रदश्यते। भूमि तुरुयं जग्रह हातपूरवरेण वै इरीनं ब्रह्महत्याय रूपं भूमो प्रदश्यते। भूमि तुरुयं जग्रह खातपूरवरेण वै इरीनं ब्रह्महत्याय रूपं भूमो प्रदश्यते। भूमि पृथ्वी, तुरियं चतुर्थांश, जग्रह स्वीकार कर लिया, खातपूर गणों को भरने का, वरेन आशीर्वाद के कारण, वह निसंदेह इरीनम मरुस्थल, ब्रह्म हत्याय ब्राह्मण की हत्या से लगे पाप का, रूपम रूप भूमो पृथ्वी पर प्रदश्यते दिखाई पड़ता है। अनुवाद पढ़ता हूं श्री गोपाद द्वारा, श्री गोपाद की। मेरे पीछे दोहराइए, पृथ्वी ने राजा इंद्र से बदले में यह वरदान लेकर कि जहां कहीं भी गड़े होंगे वह अब समय पर अपने आप भर जाएंगे, ब्रह्म हत्या के पापों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया, उन पापों के कारण ही हमें पृथ्वी पर अनेक मरुस्थल दिखाई पड़ते हैं। तात्पर्य पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। क्योंकि रेगिस्तान पृथ्वी की दूषित स्थिति के कारण प्रकट होता है, अतः कोई भी अनुष्ठान रेगिस्तान में नहीं किया जा सकता। जिनके भाग्य में रेगिस्तान में रहना बधा है, उनके बारे में समझना चाहिए कि ब्रह्म हत्या के पाप के कारण वहां रह रहे हैं। हरे कृष्ण। पृथ्वी ने राजा इंद्र से बदले में ये वरदान लेकर कि जहां कहीं भी गड़े होंगे समय पर अपने आप भर जाएंगे, ब्रह्म हत्या के पापों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। उन पापों के कारण ही हमें पृथ्वी पर अनेक मरुस्थल दिखाई देते हैं। चौथा हिस्सा स्वीकार किया है, फोर्थ पार्ट, तो बाकी तीन भी किसी ने स्वीकार किए होंगे। मोटी बात यहां पर यह आ रही है कि इंद्र, पिछले श्लोक में आपने पढ़ा होगा कि इंद्र इतना शक्तिशाली था कि यदि चाहता तो ब्रह्म हत्या के पापों को निरस्त कर सकता था, किंतु उसने हाथ जोड़कर पाप भार को पछताते हुए स्वीकार कर लिया। उसने एक वर्ष तक यातना भोगी, तो अपनी शुद्धि के लिए हत्या के पाप को पृथ्वी, जल, वृक्ष तथा स्त्रियों में बांट दिया। ब्रह्म हत्या के पाप को उसने बांट दिया है, आगे फर्दर स्वीकार कर लिया है तो उसे खुद भोगना चाहिए था। तो मैं किसी वस्तु को स्वीकार कर लेता हूं तो मुझे खुद भोगनी चाहिए ना वो, तो मैंने स्वीकार कर लिया कि मुझसे गलती हुई है, अब पनिशमेंट इनको दे दो आप। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। गलती मैंने करी है, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, पर मैं चाहता हूं कि आधी पनिशमेंट मैं भोग लूं एंड पार्ट ऑफ पनिशमेंट आप भोग लो दूसरे को। यही यहां पे क्वालिटी है कि इंद्र ने ब्रह्म हत्या के पाप को डिवाइड कर दिया है चार में। क्यों? वाई? बाकी तीन पार्ट भी पढ़ते हैं, लेट अस सी व्हाट आर दे। पार्ट नंबर दो, वृक्षों ने इंद्र से बदले में ये वरदान लेकर कि काटने पर उनकी शाखाएं फिर से उग आएंगी, ब्रह्म हत्या के पाप का चतुर्थांश ले लिया। ये पाप वृक्षों से निकलने वाले रस के धूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इस रस को पीना वर्जित है। पार्ट नंबर तीन, स्त्रियों ने इंद्र के बदले में ये वरदान प्राप्त करके कि वे अपनी काम वासनाओं को जब तक वे भ्रूण के लिए हानि करना हो गर्भकाल में भी निरंतर पूरी कर सकेंगी, पापों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया, फलस्वरूप स्त्रियों में प्रत्येक मास रजोदर्शन होता है। पाप नंबर चार, जल ने इंद्र के बदले में यह वर प्राप्त करके किसी अन्य वस्तु में जल मिलाने से उसका आयतन बढ़ जाएगा, पापों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया, इसलिए जल में बुलबुले तथा फेन उठते हैं, मनुष्य को चाहिए कि इन्हें हटाकर ही जल भरे। ब्रह्म हत्या के पाप को चार भागों में बांटा और चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया उसको, जबकि ब्रह्म हत्या के पाप को इंद्र को स्वयं भोगना चाहिए था। ऐसा क्यों किया? वाई? कारण बड़ा सिंपल है कि इस भौतिक संसार के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं परंतु अवेलेबिलिटी नहीं थी। भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान के माध्यम से सारे कार्य होते हैं, कि जिन लोगों ने ब्रह्म हत्या की है उनको सजा कहां दी जाएगी? उनका जब जन्म होगा तो जन्म होने के बाद ब्रह्म हत्या वाले लोग कहां रहेंगे? आज आप करंट सिनेरियो में देखो, आज रेगिस्तान के अंदर थोड़ी सी तरक्की है, पेट्रोल मिल गया है, तो भौतिक तरक्की है, आध्यात्मिक तरक्की नहीं है। आज से 1400 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले वो लोग कैसे थे? जैसे आदिवासी होते हैं। अगर आप जो है कुरान पढ़ेंगे तो उसकी 16वीं सूरा के अंदर उल्लेख है कि किसी भी पुरुष को अपनी बहन और मां के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। ये एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है, पशुवत व्यवहार है। जो ब्रह्म हत्या के लोग हैं उनको ऐसी जगह पर जीवन मिलेगा जहां पर कि उनको जो है आर्यन अर्थात वैदिक मूल्यों के बारे में जानकारी नहीं होगी, जहां वैदिक मूल्यों पे उनकी परिपक्वता नहीं होगी। दे विल बी इन द बेसिक इंस्टिंक्ट, बहुत ही साधारण उनकी जो है मनोवृत्ति होगी, बिल्कुल गिरी हुई। आज के सिनेरियो में देखेंगे तो रेगिस्तान वाले जो लोग हैं उनका मेंटल डेवलपमेंट उतना बढ़िया नहीं है। उन्होंने सारी चीजें हायर करी हुई हैं, आउटसोर्स करी हुई हैं। आप सऊदी में जाइए, दुबई में जाइए, गल्फ में जाइए, दोहा, कतार, जॉर्डन, ओमान, यमन, जितनी जगह हैं वहां पर काम करने वाले लोग कहां के हैं? उनके अपने लोग तो मौज करते हैं, डॉक्टर्स हैं वहां पे, तो यहां से गए हुए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, लंका। इंजीनियर्स हैं तो यहां से गए हुए हैं, आर्किटेक्ट्स हैं तो यहां से गए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं तो यहां से गए हुए हैं, मैसन यहां से गए हैं, इलेक्ट्रीशियन, मतलब उनके पास अपनी बुद्धि जो है परिष्कृत नहीं है। तो इन चीज का अरेंजमेंट करना है। तो इसलिए जो है लीला ये रची जा रही है कि इंद्र ने अपने पापों का चौथा हिस्सा जो है वो पृथ्वी को दिया है और वहां पर गड़े जो है रेत से भर गए हैं, मरुस्थल बन गए हैं, जिससे कि उन मरुस्थलों के अंदर ब्रह्म हत्या वाले लोगों को रहने का इंतजाम हो सके। देख एनवी बॉन देर, अगर वृक्ष आप काट लेते हो और वृक्ष में नई कोपल नहीं उगती है तो क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? खत्म हो गया ना। आप तने को काट दीजिएगा, जब सीजन आएगा उसका तो तने के आपने बिल्कुल जड़ से इतना इतना छोड़ दिया है तो नीचे से ही कोपल निकल आएंगी और दोबारा से पेड़ जो है खड़ा हो जाएगा। मतलब ये जो पावर है वृक्षों को रीजेनरेशन का, ताकि दोबारा से वो अपने आप को जनरेट कर सकें, वो पावर भी तो चाहिए थी। वो पावर पहले अवेलेबल नहीं थी, पहले इस तरह के मकान नहीं थे, भवन नहीं थे, पहले जंगल थे, बहुत कम कस्बे नहीं थे, सिटीज नहीं थी, मेट्रोज नहीं थी, टाउनशिप्स नहीं थी, सिलेक्टेड सिटीज थी जहां पर कि राजा का राज्य है, जैसे उनका अयोध्या है, कौशल नरेश है, काशी नरेश है लिमिटेड, पर वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी ही सिस्टमेटिकली प्लान, जो कि नीचे से खुदाई में निकल रही है, पता लगता है कि देवर नॉट एज बिग एज दिस। राज्य फैला है दूर दूर तक, परंतु विलेजेस हैं, हरियाली है, खूब हरियाली है, इतने पेड़ हैं कि अगर कट भी जाएंगे तब भी पेड़ों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर आने वाले समय के अंदर जो है पेड़ों के साथ समस्या आने वाली है, लोगों ने पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर देना है, इसीलिए उसका इंतजाम किया गया। क्या इंतजाम किया? कि कोपले निकले और पेड़ दोबारा से नए हो जाए, हरे भरे हो जाए। अब आती इसके बाद समस्या कि उनका रस, पेड़ों का रस, ताड़ी पी है किसी ने? ताड़ी क्या होती है? ताड़ी व्हाट इज ताड़ी? कहां मिलती ज्यादा? बिहार में। ताड़ी के अंदर जो है ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ के पेड़ का जो तना होता है उसको छीलते हैं, बार्क, उसकी जो छाल होती है जगह जगह से कट लगाते हैं, तो जहां से कट लगता है वहां से तने के अंदर से जो है लिक्विड बहना शुरू हो जाता है, और वो जो लिक्विड है दैट इज इंटॉक्सिकेटिंग, नशीला है। इसलिए जो है ताड़ी लोग जो है शराब की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके पीते हैं, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड। तो यहां कहा जा रहा है कि उनको पाप वृक्षों से निकलने वाले रस के रूप में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उन वृक्षों के ऊपर जिनमें ये जो उनसे रस निकलने की क्वालिटी सौंपी गई है वो पाप के वृक्ष हैं, तो उनको पीने के बाद भी अब पाप का ही कार्य करेंगे। शराब पीने के बाद कैसा कार्य होता है, पुण्य का कि पाप का? सो इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट रिकमेंडेड। स्त्रियों ने इंद्र के बदले में वरदान प्राप्त करके कि वे अपनी काम वासनाओं को जब तक वे भ्रूण के लिए हानि करना हो गर्भकाल में भी निरंतर पूरी कर सकेंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे। आज आप टीवी देखेंगे, आज आप मैगजीन पढ़ेंगे, उसमें आर्टिकल्स आते हैं कि आप जो है काम वासनाओं की पूर्ति गर्भाकाल के दूसरे महीने के बाद तीसरे महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारे जो है ऐसे आर्टिकल्स साइंस ने आज की डेट में पब्लिश किए हैं। टेक्निकली दे आर हार्मफुल, पर फिर भी कोई काम वासनाएं इतनी प्रबल हैं कि उसके लिए इसको उन्होंने परमिट किया। ये भी जो है पाप का कार्य है, क्योंकि ये जो दूषित मनोवृत्ति है इंद्र ने जो तीसरा हिस्सा पाप का दिया है उसके कारण आ रही है। तो ऐसा अगर करते हैं तो संतान पे भी असर होता है और माता पे भी असर होता है, ये पाप का कार्य है। करने वाले को भी दोनों पार्टीज के लिए पाप का कार्य है। उसके बाद जल ने इंद्र से बदले में ये वर प्राप्त करके कि किसी अन्य वस्तु में जल मिलाने से उसका आयतन बढ़ जाएगा, पापों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। दूध में पानी मिलाते हैं ना तो दूध की क्वांटिटी बढ़ जाती है, एक कलयुग का प्रभाव। पाप का कार्य है कि आप ओरिजिनल के अंदर पानी ऐड करके उसका आयतन अर्थात उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें और उससे लाभ कमाएं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये बातें पहले से प्रिडिक्टेड हैं, यस दिस इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस। तो इसलिए जो है चौथा हिस्सा जो है इसको स्वीकार किया है। साथ ही लिखा है कि जल में बुलबुले और फेन उठते हैं। कभी आप जो है नदी में जाएंगे नहाने के लिए, बहाव तेज होगा, किनारों से नदी टकराएगी तो बुलबुले उठेंगे और फेन निकलेगा। अगर आपको पानी पीना है कहीं पर नदी का तो आप फेन हटा के बुलबुले हटा के पानी पीते हैं। यू डोंट टेक इट लाइक दिस। अगर घर के अंदर भी पानी भरते हैं, बुलबुले आ जाते हैं या फेन आ जाता है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, पानी शुद्ध नहीं है, कुछ गड़बड़ है, किसे बुलबुले आ रहे हैं या फेन आ रहा है। अर्थात ये भी जो है पाप का चौथा अंश है, चतुर्थांश है। तो इंद्र ने जो है अपने पापों को चार में डिवाइड कर दिया। उसके पीछे कारण यही था, हालांकि उसको सजा खुद भोगनी चाहिए थी, परंतु आने वाला जो समय है उसके अंदर जो प्राणी आ रहे हैं, जो मनुष्य आ रहे हैं, उनके लिए कुछ सीख है और कुछ उनके लिए अवेलेबिलिटीज हैं। जैसे कि पाप का कार्य करने वाले जीव जो है जब उनका जन्म होगा तो वो कहां रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, कैसे कैसे उनके जीवन के अंदर घटनाएं दुर्घटनाएं होंगी, इस सब के लिए जो है ये चारों चीजें ऑर्गेनाइज की। अब इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट श्लोक आता है जो इस चैप्टर का सार है। हत पुत्र ततो त्वष्टा जुहा इंद्राय शत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जाहि विद्विषम। विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान किया। अग्नि में ये उच्चारण करके आहुति डाली कि हे इंद्र के शत्रु तुम्हारी अभिवृद्धि हो, तुम अविलंब अपने शत्रु का वध करो। त्वष्टा द्वारा उच्चरित मंत्र में कुछ त्रुटि रह गई थी क्योंकि उसने अल्पकाल के बजाय दीर्घकाल का उच्चारण किया जिससे मंत्र का अर्थ बदल गया। त्वष्टा इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण करना चाहता था जिसका अर्थ था हे इंद्र के शत्रु। इस मंत्र में इंद्र संबंध कारक षष्ठी में आया है, अतः इंद्र शत्रु में तत्पुरुष समास हुआ। दुर्भाग्यवश त्वष्टा ने इस मंत्र का देर तक उच्चारण किया जिसका अर्थ इंद्र के शत्रु से बदलकर इंद्र जो शत्रु है हो गया। फलस्वरूप इंद्र का शत्रु न प्रकट होकर भृत्रासुर का शरीर प्रकट हुआ जिसका शत्रु इंद्र था। क्या सिग्निफाई करता है ये श्लोक, क्या बताता है? ठीक है, और मिस्टेक, कैसी मिस्टेक, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक, किस तरह की गलती? ठीक है, उसमें मिस्टेक हुआ, क्या मिस्टेक हुआ? इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आता है श्लोक से कि हमारे शास्त्रों में विधान था कि जब भी आप जो है वेदों को पढ़ते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के लिए आपको विद्वान होना चाहिए, परफेक्ट इन नॉलेज। आपका मन, आपकी इंद्रियां पूर्णतया संयमित होनी चाहिए जिससे आप उस संयम के अंतर्गत उस मंत्र के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें। तब जब मंत्र को ठीक से पढ़ा जाएगा, ठीक से उच्चरित किया जाएगा, तब उसका जो है ठीक से लाभ प्राप्त होगा। कौन सी जगह पे कर रहे हैं, क्या उस वक्त परिस्थितियां हैं, क्या हालात हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, इन सब को अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। और उच्चारण करने से पहले यू हैव टू बी श्योर कि आप परफेक्ट हैं, परफेक्शन में हैं। अगर आप परफेक्शन में नहीं है तो ऐसी मिस्टेक होती है, मन उद्वेलित है। क्यों? कि पुत्र का वध हो चुका है। तीन सिर वाले विश्वरूप का वध हो चुका है, तो मन जो है वो बेचैन है, मन विचलित है, डिस्टर्ब्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है। इसलिए जो है वो विचलित मन के साथ जब मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो मंत्र का उच्चारण ठीक नहीं होता। अब यहां पर जो लिखा गया है समास की चर्चा हो रही है। भगवद गीता के अंदर 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं अक्षरा नाम अकार अस्मि द्वंद समासी कस्य च अहम एव च अक्षकाला धाता अहम विश्वत्मुख। अक्षरों में मैं अकार हूं, समासों में द्वंद समास हूं, शाश्वत काल में भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। समास क्या होता है और इसका रोल क्या है? जब इस मंत्र के उच्चारण की बात हो रही है तो इसका रोल क्या है? समास का यहां पर यूटिलाइजेशन जो है गलत कैसे हो गया, कैसे गलती हुई? तो सबसे पहली बात यह है शॉर्ट में कि समास किसे कहते हैं, संधि क्या कहलाती है और समास क्या कहलाता है, बताइए। जब दो शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनता है तो वो संधि कहलाती है। उनको आप अलग अलग कर सकते हो और उनका अर्थ भी आप जो है अलग अलग समझ सकते हो। ठीक है, आप कोई भी श्लोक लेंगे, जैसे आज ही का श्लोक लेते हैं हम, तो आज ही के श्लोक के अंदर जो है यहां पर आपको संधि मिलेगी, उसको विच्छेद करते हैं। भूमि स्तुरुयम, तो दो शब्द हुए भूमि और तुरुयम। इसके बाद अगला श्लोक लेते हैं हस्तपुत्र सतत्वष्ट हतपुत्र ततः त्वष्ट जुहावेन्द्राय जुहाव इंद्राय। तो ये जो है दो शब्दों को जब जोड़ के एक शब्द बनता है तो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उच्चारण करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम कहते हैं संधि हुई है दो शब्दों के अंदर, और उनका हम संधि विच्छेद अर्थात उसको दो में या तीन में बांटकर उसका अर्थ समझ सकते हैं। समास का अर्थ क्या है? इंग्लिश की डिक्शनरी में समास का अर्थ है कंपाउंड वर्ड, मतलब इसके अंदर जो है दो शब्द होंगे, इन शब्दों को कहते हैं पद। दो पद होंगे, जो पहला पद है उसको पूर्व पद कहते हैं, जो दूसरा पद है उसको उत्तर पद कहते हैं। एक फर्स्ट एक सेकंड। फर्स्ट वाले को पूर्व पद के नाम से पुकारा जाता है और दूसरे वाले को उत्तर के नाम से पुकारा जाता है। शास्त्र के अंदर जो है समास की चार वैरायटी बताई गई है। व्याकरण अष्टाध्यायी पढ़ेंगे, पाणिनी की व्याकरण पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि इसकी जो है चार वैरायटीज हैं। दो शब्दों को मिला के शब्द बना है तो उसमें चार वैरायटीज में पहला आता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव के अंदर जब आप उच्चारण करेंगे तो पहला शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रधानता है। अधिहरी, तो यहां पर जो है नरसिंह, नरहरी, तो हरि शब्द तो कॉमन हो गया, इंपॉर्टेंट क्या है? नर हरि, नर सिंह। इस तरह जो है जब अधिहरि की बात करते हैं तो पहला शब्द जो है इसके अंदर प्रधान है, तो अव्ययी भाव कहलाता है। दूसरा समास कहलाता है तत्पुरुष। तत्पुरुष के अंदर दूसरा शब्द प्रधान है, सीतापति। तो किसका आपको जो है नाम याद आता है? सीतापति। तो दूसरा शब्द प्रधान है, सीता जी तो हैं परंतु पति कहते ही भाव राम जी की तरफ चला गया, और सीता जी तरफ भाव नहीं रहा। भाव क्या है? सीतापति कहते ही आपके मस्तिष्क में, आपकी आंखों में, आपके कानों में राम जी का स्वरूप प्रकट हो गया। यस, तो दूसरा शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बहुब्रीही। बहुब्रीही के अंदर क्या होता है कि जो दोनों पद हैं उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है उनके अर्थ की, उनके अर्थ की। पीत अंबर, पीत अंबर, तो ना तो आपको पीत से कोई मीनिंग मिलता है ना अंबर से मिलता है। पीतांबर तो सीधा कृष्ण याद आते हैं, याद है ना। मतलब जो दो पद हैं दोनों पदों के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दोनों पदों का मीनिंग है, ना प्रथम पद की प्रधानता है ना सेकंड पद की प्रधानता है, दोनों के मीनिंग की प्रधानता है। त्रिभंग, त्रि अभंग, किसकी याद आती? कृष्ण की। तो दोनों पदों की प्रधानता जो है जब होती है तो बहुव्रीही समास कहलाता। और चौथा है द्वंद्व समास, जिसकी भगवान भगवद गीता में चर्चा कर रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट, ये मेरी विभूति है, मेरा ऐश्वर्य है। द्वंद्व का मतलब क्या है? कि आप दो शब्द यूज करते हैं और दोनों की प्रधानता, कृष्ण बलराम, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण, मतलब दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं और आपको इसके अंदर जो है दोनों की प्रधानता दिखाई देती है। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि इंद्र क्षेत्रों में तत्पुरुष समाप्त हुआ, समास हुआ। तत्पुरुष का मतलब है दूसरा शब्द प्रधान। अब उसको आप उच्चरित कैसे करते हैं, उसको बोलते कैसे हैं, उसको आप बोलते कैसे हैं, उसमें डिपेंड करता है कि उसका मीनिंग बदल जाएगा। एक शब्द है हिंदी में, साधारण भाषा में हम यूज करते हैं दूध, दूध बड़े ऊ की मात्रा, दूध तो छोटे ऊ की मात्रा हो गई। कुछ जगह पे दूध यूज करते हैं, कुछ जगह पे दूध यूज करते हैं, पर बोलने के स्टाइल में आपका जो है जो आपका प्रोनंसिएशन है उसमें चेंज आता है। उसी को यहां लेंगे तो यहां उसने क्या किया, उसका ध्यान कहीं विचलित था, मन विचलित हो रहा था, मन वहां पे फिक्स नहीं था। तो बोलते हुए जहां इंद्र में ई छोटी ई है, इंद्र में ई कौन सी आती है, बड़ी ई इस्तेमाल कर दी, ईख वाली ई इंद्र। हमें कई बार बोलते हैं ना हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोल करते हैं ना, कैसी आपकी लय जो है उसके अंदर कितनी आप लंबाई में खींचते हो उसको, उस पर डिपेंड करता है। तो उसने जो है जब शब्द इस्तेमाल किया है तो उसने ई की जगह पर, छोटी ई की जगह पर कैपिटल पर बड़ी ई, मतलब इंद्र हो गया। अब शत्रु में ऊ छोटा आता है, त्रा में शत्रु ऊ बड़ा कर दिया। तो तत्पुरुष समास के अंदर क्या है कि चूंकि इसके अंदर दूसरे शब्द की प्रधानता है, तो शत्रु बोलता था तो मीनिंग अलग था, शत्रु बोला तो मीनिंग बदल गया। और मीनिंग क्या बदला कि पहले में वो जो है इंद्र को मारने वाले का प्राकट्य चाहता था, अब चेंज हुआ तो इंद्र का जो शत्रु है, जो इंद्र जिसको मार सके उसका प्राकट्य हो गया, वृत्रासुर आ गया। इस श्लोक से मुख्य बात यह मिलती है कि हमें जो संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण है, जब हम प्रेयर्स करते हैं, जब हम भगवान से वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको उस प्रार्थना को परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। अगर आप उसको जो है शब्दों का जाल हो जाएगा या आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, यू शुड अवॉइड इट। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, कीर्तन चल रहा होता है, तो उसमें एक मेजर इंस्ट्रक्शन क्या है, मेजर इंस्ट्रक्शन है, हम लोग फॉलो नहीं करते, अलग बात है। जब आप कीर्तन चल रहा है तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन आती है कि वक्ता द सिंगर गायक जिस लय में गा रहा है वो आपको अंडरस्टैंड करके उसी लय में गाना है, अपनी लय नहीं बनानी। कि वो एक लय में गा रहा है, आपने अपनी लय में गा दिया तो रिदम समाप्त हो जाएगी। इन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है। यहां जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दुर्भाग्यवश त्वष्टा ने इस मंत्र का देर तक उच्चारण किया जिससे उसका अर्थ इंद्र के शत्रु से बदलकर इंद्र जो शत्रु है वो हो गया। प्राकट्य चाहता था ऐसे का जो इंद्र को मार सके, और प्राकट्य हो गया ऐसे का जिसको इंद्र मार सके, जो इंद्र से मर जाए। आपको कोई भी मंत्रों का उच्चारण करना है तो उसका तरीका क्या है, मतलब आपको पूजा पाठ करना चाहते हैं, कर्मकांड करना चाहते हैं, सपोज आपका मन जो है कर्मकांड में रच गया है कि आपको कर्मकांड ही करना है। यहां चर्चा कर्मकांड की हो रही है ना, भगवान की स्तुति नहीं हो रही है, कर्मकांड है कि मुझे ऐसी एक चाहिए जो कि इंद्र को मार सके। तो कर्मकांड के अंदर मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है आपको छह चीजें चाहिए। नंबर एक देश, स्थान कहां बैठ के आपको करना है। नंबर दो काल, उस समय क्या है करने का, व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम यू वांट टू डू। तीसरा है द्रव्य, मतलब वर्ण आश्रम के अनुसार नियम पूर्वक आपने जो अर्जित किया हुआ है धन सामग्री उसका आपके पास जो है वर्ण आश्रम सिस्टम के अनुसार। तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वृत्ति से अर्न किया हुआ है, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वृत्ति से अर्न किया हुआ है, वैश्य है तो वैश्य वृत्ति से अर्न किया हुआ है, शूद्र हैं तो शूद्र वृत्ति से अर्न किया हुआ है। यू हैव टू लर्न दैट। उसके बाद है कि करने वाला श्रद्धावान होना चाहिए, यस टू बी एक्सपर्ट, श्रद्धा होनी चाहिए कि यस दिस विल फेच रिजल्ट्स, इससे जो है हमें जो फल है वो प्राप्त होगा। फल कैसा, रिक्वायर्ड फल, जो हमें चाहिए वो फल प्राप्त होगा। और पांचवी चीज है मंत्र, मतलब एक एक शब्द किसी अक्षर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे इसने मिस्टेक करी और फंस गए। और छठा है विधि, ఇట్ హ్యాస్ టు బి పూర్ణ విధి పూర్వక్. విధి మే కమీ నహీ రహనీ చాహియే. జబ్ తక్ యే ఛే చీజే పూర్ణ నహీ హోంగీ, ఆప్కో జో హై ఉస్ మంత్రోచారణ కా, ఉస్ హవన్ కా, ఉస్ యజ్ఞ కా లాభ నహీ హోనే వాలా హై. క్యోంకి ఆప్ కర్మ కాండ కర్నే వాలే హో, భగవాన్ యహీ కహతే హై కి జబ్ ఆప్ విధి పూర్వక పూజా కర్తే హో తో ఆప్కో ఉస్కా ఫల్ ప్రాప్త హోతా హై, రిక్వైర్డ్ ఫల్ మిల్తా హై, ఉస్కో మిల్నే సే కోయి రోక్ సక్తా నహీ. దేవీ దేవతా జో హై ఆప్కో ఉస్ ఫల్ కో దేనే కే లియే బాధ్య హై, క్యోంకి ఆప్నే ఉన్కీ పూజా అర్చనా జో హై విధి పూర్వక కరి హై. హోతా క్యా హై కి హమ్ లోగ్ కర్మకాండ కర్నే తో బైఠ జాతే హై, అబ్ కితా జీ ఫైదా కోయి నహీ హోయా. పండిత జీ ఆయే సీ, యజ్ఞ కరా గయే సీ, ఫైదా నహీ హువా. పండిత నే కహా భయ్యా తుజే కర్నే 11,000 మంత్ర కర్మకాండ కే అందర్. పండిత జీ పైసే లో ఆప్ కర్ దో మేరీ జగా, మే ఛుట్టీ పా గయా, మే అప్నా కామ్ ధందే మే లగా రహా, కర్ ఆప్ దో. విధి పూర్వక నహీ హువా, ఇసిలియే లాభ నహీ మిల్తా. భౌతిక సాహ ఆప్కీ బాత్ కర్ రహా, జో కి హమే నహీ చాహియే. టెక్నికలీ హమే భౌతిక లాభ నహీ చాహియే, వి డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ భౌతిక అడ్వాన్స్మెంట్. పరంతు ఇస్కే పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ దోనో ఆస్పెక్ట్ సమజనే జరూరీ హై. జబ్ నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్ సమజ్ జాయేంగే తో ఫిర్ హమ్ ఇస్కో అవాయిడ్ కరేంగే. జబ్ హమ్ ఇస్కే నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్ సమజ్ జాయేంగే కి ఇస్కా నుక్సాన్ క్యా హోనే వాలా హై, తో హమే జో అభీ నుక్సాన్ తో హోనా హీ క్యూ కరే, ఛోడో పరే, క్యా జరూరత హై కర్నే కి, తో ఫైదా ఫైదా నా హమారే పాస్ ప్రాపర్ మంత్ర హై, నా ప్రాపర్ మంత్ర ఉచ్చారణ కర్నే వాలా హై, నా విధి పూర్వక కర్ పాయేంగే, నా హమ్ ఇతనే శ్రద్ధావాన్ హై, నా పండిత శ్రద్ధావాన్ హై కరానే వాలా, తో ఛోడ్ దో. జైసే హీ ఆప్ నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్ మే అండర్స్టాండింగ్ మే ఆఓగే, ఉస్కో ఆప్ ఛోడ్ దోగే, త్యాగ్ దోగే. జబ్ తక్ నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్ నహీ పతా లగేంగే తబ్ తక్ చిప్కే రహోగే. नहीं नहीं करना, देखो उसने बताया है ना, यह भी करना चाहिए, फलाना हवन कराते घर में, ये करते वो करते, बट करवाने वाला एक्सपर्ट नहीं है, करने वाला एक्सपर्ट नहीं है, मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है, श्रद्धा है नहीं है, प्रॉपर स्थान चूज नहीं किया गया है, प्रॉपर समय चूज नहीं किया गया है. अगर आपको कहा जाए कि भाई 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में करना है तो आप 10 से पहले शुरू नहीं करोगे, जितना मर्जी लगा लो आप, तो कोई गल नहीं, आधा घंटा बाएं दाएं तो हो ही जाता है, फर्क क्या फर्क पड़ता है. मीन्स जो एग्जैक्ट फिगर है, अगर आपको टाइम 9 से 9:30 का है तो 9:30 बजे खत्म करना है उसे करके, वेरी शॉर्ट. आप उसको खींचते चले जाते हो, अपनी मर्जी से करते हो, तो क्या ना देश रहा, ना काल रहा, ना द्रव्य रहा, ना श्रद्धावान रहा, ना मंत्र रहा, ना ही विधि रही, तो मामला फेल हो गया. यही यहां पर हुआ. मन विचलित है, सोच कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, तो मंत्र के उच्चारण में गलती हो गई. इंद्र शत्रु के बजाय इंद्र शत्रु, शत्रु लंबा हो गया, लॉन्ग, एंड दैट वॉज द प्रॉब्लम. इसलिए जो है ऐसा जो है वहां से असुर प्रकट हुआ है जो इंद्र के हाथों मारा जाएगा, ऐसा उनको जो है प्राणी नहीं प्रकट हुआ है जो इंद्र को मार सके. ये जो है लुब्बो लुआब जो है इस श्लोक का ये है कि हमें ऐसी चस्त वस्तुओं में मंत्र उच्चारण में इसे गलती फलती नहीं करनी चाहिए, फंसना नहीं चाहिए. सिंपल करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इसमें भी हम गलती करते हैं. क्या गलती करते हैं? हरे कृष्ण ना के आगे जो है मात्रा नहीं है. मैंने पोस्टर देखे हैं, बैनर देखे हैं, होर्डिंग देखे हैं, मैंने घड़ी में नाम लिखा है, मंत्र लिखा है, कैलेंडर में लिखा, सब जगह पे का री शा और ना के आगे आ की मात्रा लगा रखी, सब द्रौपदी को जपे जा रहे हैं. द्रौपदी को जपे जा रहे हैं, द्रौपदी की चर्चा हो रही चारों जगह. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. मिस्टेक है तो मिस्टेक इज नॉट टू बी रिपीटेड. मिस्टेक को तुरंत अमंडन करना चाहिए, हम लोग नहीं कर पाते. तो श्लोक से जो है सीख ये मिलती है कि हमको जो है एक तो कर्मकांड में नहीं फंसना चाहिए, और नंबर दो हम कोई भी कार्य करें कोशिश करके उसमें परफेक्शन लेनी चाहिए, इम्परफेक्ट तरीके से नहीं होना चाहिए. हरे कृष्णा. कोई प्रश्न किसी का? मैं ताड़ की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल है, उनमें से एक है, ऐसे सैकड़ों हैं। मैंने बताया ना, ऐसे सैकड़ों हैं, ऐसे सैकड़ों चीजें हैं। अब उसमें क्या है कि हम जब देखते हैं आने वाले समय के अंदर, गोंद जो है ना टपकता नहीं है, चिपका रहता है। रस और सॉलिड्स में फर्क होता है, रस टपक रहा है, ताड़ टपकता है, वृक्षों से रबड़ भी निकलता है, रबड़ तो आप भी पीते हैं, रबड़ निकलता है ना, कहां से निकलता है रबड़, वृक्षों से निकलता है ना, आप पीते नहीं, वृक्षों से और भी बहुत सारे रस निकलते हैं। अब कुछ रसों का हमारे अंदर जो साइंटिफिक सिस्टम चल रहा है उसमें उन्होंने उसको मेडिसिन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। वृक्षों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको साइंस ने एक्सेप्ट कर लिया है, पर मात्रा कितनी है, मिनिमल। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सदाबहार की पत्तियां खाइए, योर हेल्थ विल बी मेंटेन, कैंसर से मुक्ति हो जाएगी। आपने 20 पत्तियां रोज पीस के खा ली, 10 पत्तियां रोज पीस के खा ली, 50 पत्तियां रोज पीस के खा ली, आप उड़ जाओगे। साइंस ने आपको इंजेक्शन दिया है। ये सदाबहार की पत्तियां जो हमेशा वो छोटा छोटा फूल लगा रहता है, गुलाबी सफेद, जिसमें कि 5 पत्तियां होती, 5 पेटल्स होते हैं, ऐसे हर जगह फ्रीली सारा साल फूल देता रहता, सदाबहार कहते हैं उसको। उसके अंदर कैंसर, कुछ खास वैरायटी के कैंसर्स को मुक्त करने का, उससे छुटकारा पाने का द्रव्य है। और उसको जब साइंस ने स्टडी किया है तो उसका बहुत ही माइक्रोग्राम्स के अंदर उसका इंजेक्शन तैयार किया है। माइक्रोग्राम्स मतलब एक ग्राम के भी हजारवें हिस्से के अनुसार, 50 माइक्रोग्राम है, 75 माइक्रोग्राम है, 200 माइक्रोग्राम है, मतलब बहुत ही कम पोर्शन है, इंजेक्शन लगता है। और उसके लिए भी पहले ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, फिर इंजेक्शन लगाया जाता है, लगाने के 3 दिन के बाद फिर ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। इट इज सो पॉइजनस, बाल उड़ा देता है, ब्लड काउंट्स कम कर देता है, बॉडी की इम्यूनिटी समाप्त कर देता है। हमने तो कह दिया सदा बाहर से बना है, और जी 3,500 का एक इंजेक्शन है, कौन लाए, मैं सदाबहार की पत्तियां खा लूंगा। भाई कितनी खानी है, वेयर इज द कैलकुलेशन। तो बेसिकली जो है, इसने भगवान ने जो हमें दिया है सब कुछ, ज्ञान प्राप्त किया है सब कुछ दिया है, या हमें वेद व्यास जी ने जो लिखा है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें आज के युग के अनुसार से थोड़ा सा बदलाव दिखाई देता है, फाइंड सम चेंज, ठीक है नहीं। जो ऋषि मुनि रहते थे जंगलों के अंदर, उनका भोजन क्या था, वो मटर पनीर नहीं खाते थे, वो शाही पनीर नहीं खाते थे, वो मलाई कोफ्ता नहीं खाते थे, वो पालक कोफ्ता नहीं खाते थे, कंदमूल। कंद मतलब जो जमीन से निकले हुए हैं, जिमीकंद है, आलू है, अरबी है, कचालू है, इस तरह की चीजें कंद कहलाते हैं, शकरकंदी है, शकरकंद, ये कंद कहलाते हैं। और मूल मतलब जिनकी जड़ जो है नीचे, जैसे गाजर है, मूली है, इस तरह की बहुत सारी वस्तुएं हैं जो जिनका जड़ नीचे थी, प्लस पेड़ों से लगे हुए फल, यही खाते थे। उन्होंने वन की लाइफ एक्सेप्ट करी। अगर आपको जो है वानप्रस्थ में जाना है तो आपको मटर पनीर नहीं खाना है रोज बना के, फीस तो घर में बैठ के, वानप्रस्थ कह दो, ग्रस्त में वान, यू हैव टू लिव ए वेरी सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ। तो आज की डेट में वानप्रस्थ लेते ही नहीं। अजी मैंने अब देखिए घर छोड़ दिया है, मैंने अब अपने घर को त्याग दिया है, मैंने वानप्रस्थ ले लिया है। कहां रह रहे हो जी, वृंदावन में रह रहा हूं जी मैं। तो वन कहां है वहां पे, तुम मकान ले रहे हो, मल्टी स्टोरी फ्लैट की 12वीं मंजिल पे रह रहे हो, तो वन में कहां रह रहे हो, वन में रह रहे हो क्या, तो सिटिंग सिटी ओमेक्स में मैंने 2 फ्लैट ले लिए हैं जी, क्या है जी, वहां स्पा है, जिम है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है। तो वन तो है ही नहीं ना, वानप्रस्थ क्या लिया, वानप्रस्थ नहीं लिया, वन तो है ही नहीं। हम तो वहां पर भी जो है एयर कंडीशनर होना चाहिए, ग्रेनाइट की शेल्फ होनी चाहिए, मार्बल का फ्लोर होना चाहिए, टीक वुड के दरवाजे होने चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। यहां नहीं रहेंगे तो वहां रह लेंगे, भैया यहां सिटी में रह रहे हो वहां भी सिटी में, फर्क क्या है दोनों में, दोनों सिटीज में क्या फर्क है, फर्क है कोई? मतलब मैंने मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है एक फ्लैट बुक कर दिया है, उस फ्लैट में मैं वानप्रस्थ ले लिया है, मैं वन में आके रहूंगा, रहे तब भी शहर में रहे, वहां भी घर से लेके, अब जो ओमेक्स में रहेगा या कृष्णा लोक में छत्तीसगढ़ मोड़ पे रहेगा वो मंदिर पैदल तो जाएगा नहीं, नीड से कार, अब मोती नगर में रहेगा यहां आने के लिए भी कार चाहिए। मतलब व्हाट यू नीड इज ए व्हीकल, व्हीकल देयर एंड व्हीकल हेयर, हाउस देयर एंड ए हाउस हेयर। वहां भी आप गैस के ऊपर जो है मटर पनीर बना रहे हो, शाही पनीर बना रहे हो, आज आलू की सब्जी बना रहे हो, कहां कंदमूल कहां खा रहे हो आप? तो बेसिकली वी हैव चेंज्ड अवर लाइफ्स, हमने अपने सिस्टम्स को चेंज कर दिया। हम जो शास्त्र के अंदर विधान है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमने मनोधर्म लगाया है उसको अपने हिसाब से बदल दिया, एंड दिस इज द टेक्निकल प्रॉब्लम। भागवतम के अंदर कई श्लोकों में जो है बहुत बढ़िया, मतलब आप लगेगा कि एक श्लोक जो है पूरी लाइफ का मैसेज दे देता, होल लाइफ, कि कैसे आपको लाइफ में चलना चाहिए। जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास मरीज आते हैं, बस डॉक्टर साहब मुंडे का ब्याह हो जाए फिर मैं वेला, कुछ नहीं है, और लगे कि शादी हो गई तो खाली क्या, तुझे बहू ने घर से निकाल दिया खाली कहां हुआ, आउट कर दिया घर से, खाली तो रह गई, सास ससुर को बहू ने घर से तड़ी पार कर दिया, अब क्या करे बेचारा, उठा फिर बरसाने चला गया, वृंदावन चला गया, वहां जाके रह रहा। इसी बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को मनुष्य जीवन का लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, वी आर नॉट नॉलेजफुल। हम अपने कर्तव्य को लक्ष्य मान लेते हैं, माई ड्यूटीज इज नॉट माई एम, एम इज डिफरेंट एंड ड्यूटी इज डिफरेंट, समझे नहीं? एज ए टीचर मेरे को स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, वो मेरा एम नहीं है। अगर टीचर कहती है कि मेरे को राइज करके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बनना है तो दैट मे बी द एम एट दैट पर्टिकुलर टाइम, पर ड्यूटी क्या है? यू हैव टू वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, you have to teach your students, give them good knowledge, make them good citizens, ये आपकी duties है, ये aim नहीं है। इसी तरह मनुष्य जीवन का aim क्या है, प्रयोजन क्या है, वो आपको पता लगता है भगवद गीता के 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक। This gives you complete knowledge कि human form जो है, human life जो है, इसका aim क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। और भगवद गीता के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक आपको पता लगता है कि आपका भगवान के साथ संबंध क्या है, जीव का, आत्मा का शरीर के साथ संबंध क्या है। दिस इज संबंध ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप। उसमें आपका ज्ञान योग आता है, कर्म योग आता है, निष्काम कर्म योग आता है, सांख्य योग आता है, क्षत्रिय का धर्म क्या है वो आता है, हर चीजें आती हैं। तो इन फर्स्ट जो 6 चैप्टर्स हैं उसके अंदर आपको भगवान के साथ संबंध ज्ञान मिलता है। आखिरी 6 चैप्टर्स के अंदर आपको मिलता है प्रयोजन। पर जो बीच के 6 चैप्टर हैं 7 से लेकर 12वें तक, उसमें आपको ज्ञान मिलता है कि आपको संबंध को निभाना कैसे है, आपको उसको जो आपकी लाइफ है उसको यूटिलाइज कैसे करना है। मुझे रिलेशनशिप पता लग गई, मुझे संबंध पता लग गया, पर निभाऊं कैसे उस संबंध को, निभाऊं कैसे? अभी तक मुझे अपना भगवान से संबंध नहीं मालूम था, आई डोंट नॉलेज। आप मेरे पास आए, मेरे चाचा थे 40 साल पहले खो गए थे, मैं उनको भूल भाल गए थे, आज मिल गए हैं, भरा पूरा परिवार है, हमने तो उनको काट दिया हुआ था, नाम ही नहीं था हमारी डायरी में, आज वो नाम चढ़ गया है। तो उनसे अभी माता से बैठ के पूछोगे, माता जी उनसे घर में शादी है, क्या देना है, क्या लेना है, रिश्तेदारी कैसे निभानी, मतलब संबंध कैसे निभाना है। पहले फॉरगेटफुलनेस थी, पहले ज्ञान नहीं था, आज आपको ज्ञान हुआ है तो आप जानना चाहते हो संबंध को निभाना कैसे। मैं भगवान का अंश हूं, ममय वंशे जीवलोके जीव भूत सनातन, मैं भगवान का अंश हूं, मुझे ये संबंध का ज्ञान हो गया। आई गॉट दिस नॉलेज कि मेरा भगवान से क्या रिलेशनशिप है। अब वो रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करना है, मुझे इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, व्हाट इज माय रोल, व्हाट इज माय ड्यूटी एंड व्हाट इज हिज रोल, व्हाट इज हिज ड्यूटी। तो भगवान ने क्या रोल डिसाइड किया, भगवान ने अपने लिए क्या रोल डिसाइड किया और आपके लिए क्या रोल डिसाइड किया, ये एक श्लोक से क्लैरिफाई हो जाता है। अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्य शाय तस्याम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिन, कि तेरे चिंतन में मेरे सिवाय कोई नहीं होना चाहिए। तेरे चिंतन में, तेरी चेतना में, तेरे स्मरण में, तेरी मेमोरी में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। अर्थात तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरण चाहे, अपना कर्तव्य करते हुए, अपनी ड्यूटीज करते हुए, अपने एक्शंस परफॉर्म करते हुए केवल मेरा ही स्मरण करना है, काम अपने करने हैं। प्रश्न कर दिया प्रभु जी कैसे काम होंगे, यू आस्क ए लेडी शी विल टेल यू। छह महीने का बच्चा चारपाई पे लिटा रखा, एक साल का बच्चा चारपाई पे लिटा रखा, कम रसोई में छौंक लगा रही है, सब्जी बना रही है, पर ध्यान बच्चे में है, छौंक में नहीं, छौंक ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है। बच्चा गिर ना जाए, बच्चा चोट ना खा जाए, बच्चा रोए नहीं, शी इज वरीड अबाउट दैट। वो बार बार में झांक के देखती है बच्चे को, उसका हर वक्त स्मरण में बच्चा है। इसी तरह आप अपना कार्य करेंगे, स्मरण में भगवान रहेंगे, दैट इज अनन्य चिंतन, किसी और का नहीं। अनन्य चेता सततम यो, सततम इज लगातार निरंतर, मेरे चिंतन में कोई गैप नहीं आना चाहिए। माम स्मृति नित्यशः, नित्य हर क्षण हर पल, और क्षण कितना बड़ा होता है। शास्त्र के अनुसार आप कमल का पत्ता लीजिए, छेद करिए उसके अंदर सुई से, तो तीन क्षण हो जाएंगे। तीन क्षण, पहले क्षण में टच किया, दूसरे क्षण में अंदर गए, तीसरे क्षण में पत्ते से बाहर निकल आए। इतना समय भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, फॉरगेटफुलनेस नहीं होनी चाहिए, यह आपका काम है। नित्य युक्त से योगिना, हर समय योग में मुझसे जुड़ा रहना है, भक्ति योग के द्वारा मुझसे जुड़ा रहना। यू हैव टू लर्न द आर्ट, ये घरेलू काम करते हुए, जैसे लेडी है, बर्तन भी साफ करने हैं, सफाइयां भी करनी, टिफिन भी तैयार करना है, लंच तैयार करना, डिनर तैयार करना, घर को मेंटेन करना, ऑफिस भी जाना, स्कूल भी जाना है, एमबीए है तो किसी एमएनसी में जाना, सब कार्य करते हुए कैसे उसको जो है हर वक्त भगवान से जुड़े रहना है। दैट इज कर्म सु कौशलम, दैट इज द क्वालिटी यू हैव टू लर्न, आर्ट लर्न करनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं मैं क्या दूंगा, व्हाट डू आई गिव, तस्य आई एम सुलभ पार्थ, तुम्हारे लिए मैं सुलभ हूं, यू कॉल मी एंड आई विल कम। तुमने पुकारा और हम चले आए, द्रौपदी ने पुकारा हम आ गए, पुत्रा ने पुकारा हम आ गए, गजेंद्र ने पुकारा हम आ गए, तुम पुकारो मैं आऊंगा। द्रौपदी ने शिकायत की थी, मैंने पुकारा आप नहीं आए, मेरा वस्त्र हरण हो रहा था। बोले तेरे चिंतन में मैं नहीं था, पांचों पति थे, गुरुजन थे, पितामह थे, राजा था, स्वयं थी तुम, अपनी धोती पकड़े रखी हाथों से दांतों से, मैं कब आया, जब तुमने मेरी शरणागति ली, तो तुम्हारे चिंतन में केवल मैं रह गया और कोई नहीं रहा, मैं तुरंत प्रकट हो गया। हम लोगों के चिंतन में सारा समाज है, पूरा घर है, अपना शरीर है। सी चिंतन में ओहो ये दो सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं, आज तो ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा निकलवाने। चिंतन में क्या है, भगवान नहीं, चिंतन में स्वयं है हम लोग, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। जिस दिन चिंतन में केवल भगवान आ जाएंगे, नो वन एल्स, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। तब भगवान कहते हैं सुलभ, आम इजिली अवेलेबल फॉर देम, इजिली, इतना इजी कि आप सोच नहीं सकते। स्मरण करेंगे तो भगवान आ जाएंगे। कंडीशन एक है, अनन्य चेता। भगवत गीता के श्लोकों को जिस दिन समझ लोगे ना ठीक से, ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। सब्जेक्ट और नीचे लिखा होता है ना, दो ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, नीचे लिखा होता है स्टार लगा, कंडीशन अप्लाई। ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। कंडीशन क्या है कि तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। मैं तुझे अपने धाम ले जाऊंगा, शर्तें चार हैं, मन मना, भव मद भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु। फोर कंडीशंस फुलफिल कर दे, यूल बी इन माई अबोट। मन मुझे दे दे जो दिया नहीं जाता, हम दे नहीं सकते मन भगवान को, मैं क्या करूंगा फिर? वो देखूंगा नहीं, मन तो मेरा। उसी कृष्णा हैज गिवन यू ब्यूटिफुल मैसेजेस, ब्यूटिफुल मैसेजेस। अच्छा ऐसा है, वो काम करूंगा पर कोशिश करूंगा उसमें गलती ना हो। जब तुझे पता है कि उसमें गलती हो सकती है तो पंगा क्यों ले रहा तू? दिस इज व्हाट स्टार्टेड। पंगा लिया ना इंद्र को मारने के लिए, किसी को प्रकट करूं। वो अलग बात है कि राजा चित्रकेतु थे, उनको ये योनि मिली है, उन्होंने पार्वती जी को, शिव जी को थोड़ा सा अपना गलत स्थिति में कमेंट कर दिया वगैरह वगैरह, कुछ बातें हुई। बट टेक्निकली स्पीकिंग हमें पता होता है कि ये काम गलत है, इस तरीके से कार्य करना गलत, फिर पंगा लेते हैं, नहीं यार कर देते हैं कोई बात नहीं, बट वाई शुड वी डू इट? हमें करना ही नहीं चाहिए। तो कर्मकांड में क्यों फंसे? वाई जब पता है उसमें पंगे होने हैं तो क्यों फंसा जाए उसके अंदर? पर फिर भी हम फंसते हैं। Somebody compels us, कंपेल करता है, नहीं कर लो कोई बात नहीं, कर लो कर लो। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, वट इज रिक्वायर्ड एंड वट इज नॉट रिक्वायर्ड, वट इज असेंशियल वट इज नॉट असेंशियल। अर्थात बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, क्या करनी है क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या सत है क्या असत है, इसमें भेद करने के लिए यू शुड हैव आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को परिपक्व करना है, यू हैव टू लर्न हाउ टू परफेक्शन एंड यू विल विन। हरे कृष्णा। श्रील भगवान की।